ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஏக பிரம்ம சத்ய ஜெகன் மித்யா. ஜகத் கு ஜானே வாலே கு பிரம்ம சர்வஜ்ஞ கா ஜாயேகா, பிரம்மஜ்ஞ கா ஜாயேகா. இஸ்லிய யே நஹி, சர்வஜ்ஞ சர்வம் சபக்கு ஜானதா ஹை, பிரம்ம ரூப் சே சாமான்ய ரூப் சே பிரம்ம ரூப் சே ஜானதா ஹை. ஹா, ஈஸ்வர பரமாத்மா சர்வஜ்ஞ ஹை, சர்வவித் விசேஷ ரூப் சே சப் ஜானதே. கௌன் க்யா சோதா ஹை அந்தர்யாமி மன் மே க்யா ஜானதா ஹை, க்யா கரேகா யே பி ஜானதே, கிஸ் க்யா கர்ம கிஸ்னே க்யா யே பி பரமாத்மா ஜானதே. வோ சர்வஜ்ஞ ஹை, சர்வவித் ஜ்ஞானி ஹை. சர்வம் ச அசோஜ்ஞஸ்ச, ஜ்ஞான ரூபே சர்வ ரூபே, யே பி சர்வஜ்ஞ. அத சர்வம் ஜானாதி பிரம்ம ரூபேண, சபக்கு பிரம்ம வாஸ்தவ சத்ய பிரம்ம ஐசி ஜானதா ஹை. பிரம்ம கே ஜான் ஹோஜானே பர் பிரம்ம சே பின்ன குச்சி பி பதார்த்த நஹி ரஹா ஜாண்ணே கே யோக்ய. ஜதி ஜாண்ணே யோக்ய கோய் பதார்த்த ரஹ ஜாயேகா, கர்ணே கே லியே கோய் கர்த்தவ்ய சேஷ ரஹ கயா, தோ கிருத க்ருத்ய நஹி ஹோகா, சர்வஜ்ஞ நஹி ஹோகா. சர்வஜ்ஞ கிருத க்ருத்ய தப் ஹோதா ஹை, ஜாண்ணே வஸ்து குச்சி பாக்கி நஹி ரஹே, கர்த்தவ்ய குச்சி சேஷ நஹி ரஹே. பிரம்ம ஜானீ கிருத க்ருத்ய ஹை, சபக்கு ஜான் லியா, பிரம்ம சே பின்ன குச்சி பி நஹி. கிருத்த கிருத்த ஹோகியா, ஜோ கர்னா தா கர் லியா. கர்னா க்யா தா, ஸ்வரூப சாட்சாத்கார ஹோகியா, சப் கர் லியா, ஆர் குச்சி கர்னா நஹி ஹை. யே சர்வஜ்ஞ ஹோதா ஹை, சர்வாத்மக பிரம்ம சர்வாத்மக ஹை, இஸே ஸ்வயம் சர்வ ஹோ ஜாதா ஹை. இஸ்கோ கஹனே கே லியே ஆகே மந்த்ர. விஜ்ஞானாத்மா ஸஹ தேவைஶ்ச ஸர்வே ப்ராணா பூதானி ஸம் ப்ரதிஷ்டந்தி யத்ர தரம் வேதயதி யஸ்து சௌம்ய சர்வஜ்ஞ சர்வமேவ ஆவியேஷேதி. விஜ்ஞானாத்மா, விஜ்ஞான உபாதி புத்தி உபாதி கே ஜீவ விஜ்ஞானாத்மா, சஹ தேவைஶ்ச தேவ அக்னி ஆதி கே சாத் சர்வே ப்ராண சர்வே தேவை அக்னி இந்திராதி தேவதா கே சாத் சர்வே ப்ராண சக்குராதி இந்திரிய ப்ராண சப்த சே கஹதே பூதானி பிருத்திவி ஆதி சாரே பூத ஸம் ப்ரதிஷ்டந்தி யத்ர ஜஹா பிரதிஷ்டித ஹோத்தே பிரவேச கரத்தை ஜீவ அக்ஷர பிரம்ம மே தரம் யத்ர ததக்ஷரம் பிரதிஷ்டித ஹோத்தே கா அக்ஷர பிரம்ம மே உசி அக்ஷர கோ பிரம்ம கோ வேதயதி யஸ்து ஸம்ய அக்ஷர பிரம்ம கோ ஜோ ஜான் லேதா ஹை ச சர்வஜ்ஞ சர்வமேவ ஆவிவேஷ வோ சர்வஜ்ஞ ஹோ கயா சர்வம் ஆவிவேஷ ஸ்வமே பிரவிஷ்ட ஹோ கயா சர்வமே பிரவிஷ்ட சர்வாத்மக ஹோ கயா சர்வஜ ஹே சர்வாத்மக ஹோ கயா பிரம்ம சர்வாத்மக ஹே ஜானி பி சர்வாத்மக ஹோ கயா பிரம்மஸ்வரூப ஹோ கயா இது யே மந்திர ஹுவா ஜோ பூர்வ மே கா தா உஸ்கா ஸ்பஷ்டீகரண கரனே கே லியே சதுர்த பிரஸ்ன சமாப்த ஹோ கயா இசுமே பிரஸ்ன உபநிஷத் மே கித்தனை பிரஸ்ன ஹே சே ரிஷி கே தே மஹர்ஷி பிப்பலாதி கே பாஸ் சதுர்த ஹோ கயா அபி பிராரம்ப கர்த்தே பிரம்ம சுத்த பிரம்ம கதன கரனே கே லியே ஆகே பஞ்சம பிரஸ்ன பராபர பிரம்ம பிராப்தி சாதன பரபிரம்ம பிராப்திகா சாதன அப்பர பிரம்ம ஹிரண்யகர்ப பிராப்திகா சாதன விஷய ஓங்கார கி உபாசனா விதான கரனே கே லியே உபாசனா ஜ்ஞான சே நிகிருஷ்ட ஹே ஜ்ஞான பரபிரம்ம நிர்விசேஷ ஜ்ஞான சே முக்ய ஹே நிர்விசேஷம் பரபிரம்ம சாட்சாத் கர்த்தும் அனீஸ்வரா யே மந்தாஸ்தி அனுகம்பியந்தே சவிசேஷ நிரூபணே சுத்த பிரம்ம நிர்விசேஷ கே ஜ்ஞான கே லியே ஜோ அசமர்த்த ஹே உபாசனா கே தவரா அந்தகோண சுத்த அதிக நஹி ஹுவா வைராக்ய ஜிஜ்ஞாசா நஹி ஹுயி நிர்விசேஷ பிரம்ம ஜ்ஞான பிராப்த நஹி கர் சகதே ஹே மந்த புத்தி வாலே யே மந்தா தே அனுகம்பியந்தே உன்கே பர அனுகம்பா கிருபா கி ஜாதி ஸ்ருதி கே தவரா சாஸ்திர மே வியாஸ் ஜி பி கஹதே ஆச்சாரியோ கே தவரா கிசி பிரகார சவிசேஷ நிரூபணே ஹி சவிசேஷ பிரம்ம கா நிரூபண சே உன்கே பர கிருபா கி ஜாதி சவிசேஷ பிரம்ம வாஸ்தவ நஹி ஹே பிரம்ம நிர்விசேஷ சத்ய ஹே நிர்விசேஷ சத்ய அத்விதீய ஸ்வகத சுஜாத்திய விஜாத்திய பேத ரஹித ஸ்வகத பேத ஹோதா ஹை விருட்சமே பத்திர புஷ்ப பலாதி கா பேத சஜாத்திய பேத ஹோதா ஹை ஏக விருட்ச சே தூசரா விருட்ச பின்ன ஹே அபிஜாத்திய ஹே விருட்ச சே பத்திர பின்ன ஹே பிரம்ம மே ஸ்வகத பேத நஹி க்யோங்கி நிரவயவ ஹே சஜாத்திய பேத நஹி பிரம்ம சே பின்ன சஜாத்திய கோய் ஆத்மா சேதன ஹே நஹி விஜாத்திய பேத பிரம்ம ஹே சத் விஜாத்திய ஹோகா அசத் அசத் ஜோ ஹே நே உஸ்கா பேத கஹா ஹோகா இசே ஸ்வகத சஜாத்திய விஜாத்திய தீன பேத ரஹித பிரம்ம ஹே சாவைவ நஹி நிர்விசேஷ ஹே ஔர் அபரிச்சின்ன ஹே தேச கால வஸ்து பரிச்சேத ரஹித சர்வ தேசமே ஹே சர்வ காலமே ஹே அ சர்வ வஸ்து பி பிரம்ம ஹே कोई भी वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं। एक परमाणु कोई भी छोटे पदार्थ को ब्रह्म से भिन्न मान लिया तो ब्रह्म परिच्छिन्न वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। माया ब्रह्म से भिन्न है या नहीं? माया शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अभिन्न भी नहीं कह सकते, अनिर्वचन है, किन्तु भिन्न ही नहीं, कुछ भी भिन्न नहीं है। अभी इसको प्रारंभ करते उपासना, ओंकार उपासना के द्वारा परब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों की उपासना होती है। परब्रह्म प्राप्ति का साधन, अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ प्राप्ति का भी साधन। अथ हैनम शैव्य सत्य काम पप्रछ सयो हवे तद भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकारम अविद्यायित कतम भावस तेन लोकम जयतीति। यहाँ पहले तो बता दिया सब किसमें जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि सर्व बताया, अब उपासना बताते पंचम प्रश्न और षष्ठ प्रश्न में शुद्ध ब्रह्म का उपदेश है। अभी उपासना, अतः इनम सैव्य सत्य काम शिविका पते सैव्य सत्य काम ने पूछा पिप्पलाद महर्षि से, हे भगवान सयो हवे मनुष्य सु प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायितम, जो कोई मनुष्य में ओंकार का ध्यान करे, के कब तक करे? प्रायणांतम, प्रायण मृत्यु तक। उपासना करना है थोड़ी दिन करके छोड़ देने का नहीं, मरने तक उपासना करते रहे, अंतिम समय में भी उपास्य का चिंतन मार्ग चिंतन करना है। ज्ञान यदि प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते न तस्य प्राणोत्क्रामति, आगे उसका कर्तव्य नहीं रहता है कुछ करना, और आगे जाने के लिए भी नहीं होता, मार्ग चिंतन की आवश्यकता नहीं, प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। यह ब्रह्म समस्नुते ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। आगे ज्ञान प्राप्त होने के बाद कृतकृत हो गया, कर्तव्य शेष नहीं रहा, तस्य कार्यम न विद्यते। ब्रह्मामृत न तृतस्य कृतकृत्य से योगी न नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चे न स तत्त्वविद्। ब्रह्मामृत से जो तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, उसका नैवास्ति किंचित कर्तव्यम, कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अस्ति चेत, यदि कुछ कर्तव्य है ऐसा मानता है, अस्ति चेत न स तत्त्वविद्, वो तत्वज्ञानी नहीं है। कुछ भी कर्तव्य बाकी रहा तो तत्वज्ञानी नहीं। तो इसका अर्थ नहीं तत्वज्ञान होने के बाद कुछ करेगा नहीं, चलेगा नहीं, देखेगा नहीं, यानी कुछ भी करता है तो ये मेरा कर्तव्य समझ करके नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और ईश्वर इच्छा उसकी इच्छा एक हो जाती है। ज्ञानी की इच्छा कुछ अलग नहीं तो बाधित हो जाने से ईश्वर की इच्छा से उसमें जो भी प्रवृत्ति होती, जो कुछ करता है अपने लिए कुछ नहीं करता है, ये मैं करना चाहिए करके नहीं करता है, किंतु उसकी प्रवृत्ति जो कुछ करता है वो परोपकार के लिए होता है, और उस जो कुछ आचरण करता है वो शिक्षा मिलती है। आचरण को देखकर जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके अनुसार चलते हैं तो उसी मार्ग में चलते हैं, तो ज्ञानी का व्यवहार होता है प्रारब्ध जब तक है, किंतु ये नहीं रहता है कि मेरा ये कर्तव्य। यदि कर्तव्य बुद्धि है तो वो तत्व ज्ञानी नहीं है। किंतु उपासना करने वाले को उपास्य के साक्षात्कार हो जाए तो भी उपासना करते रहना ही है। प्रायणांतम अन्य तक ओंकार का ध्यान करे, कतम वावस तेनम लोकम जेति, कि कतम है बहुत लोक है तो किस लोक को जीत लेता है ओंकार उपासना करके, ये प्रश्न हुआ। ज्ञान कर्म उपासना कर्म करके प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक तो बहुत है, विद्या देवलोक, कर्मणा पितृलोक, अग्निहोत्र आदि कर्म करके पितृलोक की प्राप्ति होती है दक्षिणायन मार्ग से। विद्या उपासना है और कर्म उपासना समुचित कर्म से अथवा केवल हिरण्यगर्भ आदि उपासना से भी देवलोकों की प्राप्ति होती है। देवलोक स्वर्ग से लेकर के बहुत है तो किस लोक प्राप्त करता है प्रश्न है। तस्मे सहोवाच एतद् वि सत्य काम परम चापरम च ब्रह्म यद ओंकार तस्माद् विद्वान एते नैवायतन नैकतरमन्वेति। तस्मै सैव्य के सत्यकाम से स पिपलाद महर्षि ने कहा, हे सत्यकाम, सत्यम काम यस्य, जिसका काम सत्य, सत्य विषय का संकल्प करने वाले, कामना का विषय, काम्यते इति काम, कामना का विषय, सत्य को जो चाहता है सत्यकाम, हे सत्यकाम, नाम है सत्यकाम, अर्थ भी उसका है, सत्य को जो चाहता है वो सत्यकाम, पर ब्रह्म चाहता है जानने के लिए, तो परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, यह ओंकार पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है। ओंकार ब्रह्म जो कहा गया ये ओंकार ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, इसलिए ओंकार ब्रह्म कहा गया। परम ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म प्राप्ति का साधन अपर ब्रह्म प्राप्ति का भी साधन है। पर ब्रह्म की भी उपासना होती है, अपर ब्रह्म की भी उपासना। और ओंकार का जो दिया अवय अर्थ समझ करके अ उ म को जान करके आत्मा के तीन पाद ओंकार की तीन मात्रा ये जागृत स्वप्न सुश्रुति विश्व तेजस प्राज्ञ इसको समझ ले, उसके बाद ओंकार की चतुर्थ मात्रा का नाम क्या है अमात्र। अतुर्य किसका नाम है, किसके चतुर्थ पाद, आत्मा के चतुर्थ पाद का नाम तुर्य, और अमात्र किसका नाम है ओंकार के चतुर्थ मात्रा, वो एक है अमात्र तुर्य है, शुद्ध है, अधिष्ठान है। जो विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुश्रुति इनका अधिष्ठान है, इनका प्रकाश है शुद्ध ब्रह्म। इसको जो जान लेता है पर ब्रह्म प्राप्त कर लेगा, और उपासना करके अपर ब्रह्म प्राप्त करता है। तस्मात विद्वान उपासक एते नैव आयतन न, इस आयतन आश्रय के द्वारा ओंकार के द्वारा एकतरम अन्वेति, दोनों में से एक को प्राप्त करता है। पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, नहीं तो अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त हो तो पर ब्रह्म रूप हो जाता है, अथवा उपासना करके सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा, नहीं तो हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा। यह आलम्बन जितने आलम्बन है सब की अपेक्षा अत्यंत समीपतम। मनो ब्रह्म इति उपासित, आकाश ब्रह्म इति आदेश, ये प्रतीक उपासना है। मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें, तो ये ब्रह्म दृष्टि करके जो उपासना करने के लिए प्रतीक सब के उपदेश किए गए, सबसे श्रेष्ठ प्रतीक है ओंकार। प्रतीक भी है और वाचक भी है नाम, तस्य वाचक प्रणव। जितने नाम परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ नाम है प्रणव नाम। इसे जप करने के लिए जो नाम जप करते हैं श्रेष्ठ नाम समझ करके सब लोग उसका जप करे, ऐसा नहीं। जप करने के लिए गुरु उपदिष्ट मंत्र नाम जप करना चाहिए। खाली श्रेष्ठ होने से नहीं, अपने जैसे उपदिष्ट है दीक्षित, और कोई कोई नहीं जान करके भी उपदेश ओंकार का उपदेश कर देते हैं जिस किस को, वो भी ठीक नहीं है। नहीं जान करके सोचते हैं वो श्रेष्ठ है, उपदेश करेंगे तो भक्त लोग कहेंगे हमारे गुरु बहुत अच्छा है जो हमको बड़ा मंत्र दे दिया। वो जरूरत नहीं, जिसको जैसे प्रामाणिक मंत्र है। ओंकार अर्थ चिंतन करने के लिए, परब्रह्म का ध्यान करने के लिए निषेध नहीं, जपने के लिए मंत्र जो गुरु उपदिष्ट मंत्र का ही जप, वही श्रेष्ठ जिसके गुरु जो उपदेश करते हैं। और गुरु यदि गलत कोई देते हैं तो इसे अप्रामाण्य होता है। कोई कोई नहीं जान करके ऐसे मंत्र देते हो, ठीक नहीं है। तो ओंकार जपने के लिए नहीं, किन्तु उपासना करने के लिए कोई उपासना कर सकता है। अवकार के साथ विश्व और आत्मा के प्रथम पाद विश्व है, ओंकार की प्रथम मात्रा जागृत अवस्था एक ही, द्वितीय मात्रा ओंकार की अ के बाद उ है, और स्वप्न अवस्था वहां तेजस एक है, फिर तृतीय पाद है आत्मा का प्राज्ञ है, अकार की तृतीय मात्रा मकार है, सुश्रुति अवस्था है, कारण रूप है, इसको विचार करके तीनों से अतिरिक्त जो तूर्य पाद आत्मा का शुद्ध है वही म के बाद तीन मात्र के बाद जो अमात्र है, ओम उच्चारण करने के बाद फिर और एक बार उच्चारण करेंगे बीच में व्यवधान होता है, वो अमात्र, उसमें कोई मात्रा है नहीं। मात्रा शब्द से कह करके अंत में कहता मात्र, मात्रा कुछ नहीं है, किन्तु कोई अधिष्ठान है जिसमें सब कल्पित है। जिस प्रकार ओंकार आत्मा के चतुर्थ पाद को नाम कहा तूर्य, तूर्य कभी अलग नहीं, तूर्य शब्द का अर्थ चतुर्थ ही है। तो आत्मा के चतुर्थ पाद कौन है, आत्मा का चतुर्थ पाद क्या है तूर्य, तूर्य शब्द का क्या अर्थ है, तूर्य शब्द का अर्थ चतुर्थ है ब्रह्म नहीं, तूर्य शब्द का अर्थ चतुर्थ, तूर्य शब्द का अर्थ चतुर्थ। तो चतुर्थ पाद कौन है कहते तूर्य, तूर्य क्या है, क्या कहें चतुर्थ। तो पर्यायवाचक शब्द होता है तूर्य, तूर्य चतुर्थ इसे शब्द बनता है। चतुरश्चयता वाद्यक्षर लोपश्च वार्तिक, चतुर शब्द से छ प्रत्यय होगा, छ को ये हो जाएगा, यह प्रत्यय हो गया तो तूर्य बनेगा, ये होगा तो तूर्य बनेगा, च का लोप हो जाएगा, तो उसको चतुर्थ कहते हैं। चतुर्थ भी वास्तव नहीं है, तीनों पाद यदि कल्पित है तो चतुर्थ कैसे होगा, प्रथम द्वितीय तीनों पाद कल्पित, तीनों पाद कल्पित उसको कहें चतुर्थ। कोई सपना में देखा चार ही पुत्र है आगे एक पुत्र हो गया, पहले पुत्र नहीं था, सोलह को बंध्या कहते थे, फिर जगने के बाद एक पुत्र हो गया। सपने में कितने पुत्र थे? चार, अभी एक हो गया, कितने हो गए? पांच कहे, पंचम उसका नाम रखे, वो नहीं चार तो नहीं थे। इसी प्रकार तीन पाद कल्पित है तो तूर्य कैसे होगा? जब तीन पाद सत्य मानते तो तूर्य सदुप्रयोग होता है। अंत में फिर इसलिए अवाच्य ब्रह्म है, तो ये दोनों में से एक प्राप्त करता है, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों के ये आलंबन है, आयतन है। अभी ओंकार पुण्य की उपासना का फल बताएंगे। पुण्य फल बताने के लिए एक एक उपासना का फल कहते हैं। एक अवयव उपासना करने पर फल है, संपूर्ण ओंकार की उपासना करेंगे तो अधिक फल है। शायद एकमात्रम अभिध्यायित सत्यनैव संवेदित पूर्णमेव जगत्याम अभि संपद्यते तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। यदि एकमात्रम अभिध्यायित, सकल मात्र के विभाग को नहीं जान करके ओंकार का एकमात्र अकार मात्र प्रधान है, आगे उसको कुछ मालूम नहीं, उसका भी ध्यान करता है तो भी ध्यान के प्रभाव से विशिष्ट गति को प्राप्त करता है, दुर्गति नहीं होती है। सत्येनैव संवेदितः, उसे एकमात्र से सम्यक बोधित होकर के, ज्ञात होकर के प्रकाशित हो जाता है, उसे ध्यान से पूर्णम शीघ्र ही जगत्याम अभी संपद्यते, जगत में मनुष्य लोग प्राप्त करेगा। संवेदितः पूर्णम शीघ्र ही पृथ्वी में प्राप्त होगा। क्या तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयते, वो ऋचा रूप एकमात्र ओंकार का मनुष्य लोक उसको पहुंचा देंगे। अनेक लोग जगत में है, वहां मनुष्य लोक में जन्म लेता है, जन्म लेगा। ऋच ऋग्वेद रूप है ओंकार की प्रथम मात्रा, अकार प्रथम मात्रा ऋग्वेद रूप से वो ऋचा उसको मनुष्य लोक पहुंचा देंगे। और उसमें भाष्य में कहा द्विजाग्रह ब्राह्मण हो जाएगा, उसके बाद जिज्ञास होगा, सतत्र तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य न तप भी करेगा, ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होगा। ये श्रद्धा होनी ये पूर्व पुण्य के फल है, ईश्वर की कृपा से श्रद्धा तप करने की इच्छा, तप कर सकता है, तप करके प्रसन्न होता है सत्वगुण के कारण, सत्वगुण अधिक होने से तप करने की इच्छा, तप से प्रसन्न और तप से अंतगुण शुद्ध होता है। तप बड़ा साधन, तपसा भी जिज्ञास तपो ब्रह्म, आगे तैतृय में आएगा, तप को ब्रह्म कहा गया। तो इसे एक मात्रा ध्यान करता है तो उसके फल रूप श्रेष्ठ कुले में जन्म लेगा, तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होगा, महिमानम अनुभवति, आगे परमात्मा स्वरूप को अनुभव करेगा, महिमान ईश्वर के महिमा विभूति को अनुभव करेगा। श्रद्धा युक्त होने से श्रद्धा रहित होकर के यथेष्ट चेष्टा करते हैं, शास्त्र के सिद्धांत को छोड़कर मनमानी करते हैं, ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा युक्त होकर के शास्त्रीय मार्ग में चलेगा, परमात्मा की महिमा को अनुभव करेगा, दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा। ये प्रथम मात्र उपासना का फल का। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते स्वअंतरिक्षम यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। यदि द्वितीय मात्रा वो औरूप मात्रा, इसे जीव ओंकार का ध्यान करता है, द्वितीय मात्रा प्रधान है, औम में द्वितीय मात्रा है, आत्मा के द्वितीय पाद है, तैजसे इसे मन में संपन्न होकर के मन में ध्यान करता है, ये द्वितीय मात्रा है, यजुर्वेद यजुर्मय है। तो सोमदेव अंतरिक्षम यजुर्भि उन्नीयते, अंतरिक्ष लोक को जाता है यजुर् मंत्र, उसको सोमलोक चंद्रलोक पहुंचा देते हैं। सोमलोक के विभूति चंद्र लोक में विभूति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, एकाग्र होकर के फिर वहां रह करके चंद्र रूप में जैसे कर्म करके पितृलोक को जाते हैं, इस प्रकार चंद्रलोक जा करके फिर कर्म फल भोगने से आ जाते हैं, यहां भी अभिभूत अनुभव करके फिर मनुष्य लोक आ जाता है। यदि निष्काम होता है, कहीं भी उपासना में जो फल कहते हैं बिल्कुल निष्काम होकर करता है तो उपासना का फल वो नहीं होता है, किन्तु अंतगुण शुद्ध होता है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। वेदांत श्रवण कोई करता है, विशेष उपासना करता है निष्काम होकर के, तो फल प्राप्त नहीं होता है, आगे मनुष्य लोग प्राप्त होगा, थोड़े वैराग्य अधिक होगा, ये समझना। यदि आगे उपासना करो तो आगे वैराग्य अधिक हो जाएगा। वैराग्य से युक्त होकर के फिर साधना करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये द्वितीय मात्रा क्या है कि तृतीय मात्रा के लिए कहते हैं, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेनैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्न यथा पादोदरस्त चा विनिर्मुच्यत एवं हवे स पापमना विनिर्मुक्त स साम भिरुन्यते ब्रह्म लोकम से तस्मा जीव घनात् परात् परम पुरुषम पुरुषमिच्यते तदेतो श्लोको उपवतः। यथा एतम ओंकार को त्रिमात्रेण तृतीय मात्रा विश्व ओम इतन तीन मात्रा ओम एतने अक्षरण ओम अक्षर से परम पुरुषम अभिध्यायत परम अपर ब्रह्म का पर पुरुष का ध्यान करता है। यदि से ध्यान करता है सतेजसी सूर्य संपन्न सूर्य में तेज रूप सूर्य के साथ एक हो जाता है सूर्य संपन्न यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुक्त पादोदर सर्प अपने चर्म को छोड़ देता है चर्म को छोड़ करके साफ होकर के चर्म को छोड़कर निकल जाता है उसमें अमत्व बुद्धि नहीं सर्प केंचुला जहां छोड़ देता है वहां नहीं रहता है। कहीं देखते एक सर्प केंचुला है तो लोग डरते आ रहे सर्प जानने वाले कहते नहीं डर मत केंचुला यहां मत सर्प यहां नहीं जहां केंचुला छोड़ देता है वो स्थान छोड़कर चल जाता है तो उसमें थोड़ा सा भी ममत्व बुद्धि नहीं केंचुला छोड़ देने के बाद अब उसका कोई संबंध नहीं चल जाता है वहां। तो इसी प्रकार ये जो उपासना करता है एवं हमेशा पापना विनिर्मुक्त जैसे पादोदर त्वचा तो छोड़कर मुक्त हो जाता है इसी प्रकार उपासक पाप से रहित तो होता है। साम भी ब्रह्मलोक उन्नियते साम तो तृतीय मात्रा रूप साम है ब्रह्मलोक उन्नियते उसको ब्रह्मलोक ले लेते हैं ब्रह्म चर्म रहित हो गया पाप रहित हो गया तो ब्रह्मलोक सत्यलोक हिरण्यगर्भ लोक प्राप्त करता है। एतस्मा जीव घनात् जो हिरण्यगर्भ है जीव का घन जीव का समुदाय समष्टि जीव समष्टि सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी है इसको कहते जीव घन जीव का समुदाय उसे समष्टि जीव रूप हिरण्यगर्भ से जीव घनात् जीव घन पर सबके अपेक्षा पर है उससे भी पर है शुद्ध ब्रह्म परात परम जो पूर्ण है पुरुष शुद्ध ब्रह्म है पुरुषम इच्छते वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की उपासना से ब्रह्म को साक्षात्कार कर लेगा